मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, यानी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इस विषय पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और डेफिनेटली जब मैं बात टारगेट की कर रहा हूं तो इसका संबंध सीधे सीधे जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर से है, क्योंकि सी सेट का टारगेट क्या होना चाहिए वह आप सब भली भांति जानते हैं। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं, पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स। सच पूछिए तो वे न केवल दुखद ही हैं बल्कि शर्मिंदगी से भरे हुए भी हैं। शर्मिंदगी जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्टूडेंट्स के स्तर की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स का स्तर नहीं गिरा है, स्टूडेंट्स का स्तर वही है, क्योंकि यदि स्टूडेंट्स का स्तर गिरा होता तो वो मेंस में भी झलकता, इंटरव्यू के मार्क्स में भी झलकता, तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर शर्मिंदगी किसके लिए। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोक सेवा आयोग जिस तरह के प्रश्न पूछ रहा है ये प्री एग्जामिनेशन में, उस पर उसे गंभीरता से और पूरी संवेदनशीलता से तार्किकता के आधार पर ही सही विचार करना चाहिए। पिछली बार जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां तक जनरल स्टडीज प्री में ही नहीं बल्कि सी सेट में भी, वे बहुत उटपटांग किस्म के थे। आप मेंटल लेवल को जज करना चाहते हैं ना, तो उसका भी तो एक आधार होता है, सिलेबस वही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि यूपीएससी ने बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के कुछ पूछा है, बल्कि सच यह कि पूछा तो सिलेबस से ही है, लेकिन मायने सिलेबस नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने उस सिलेबस से प्रश्न किस तरीके से पूछे हैं, किस पैटर्न से पूछे हैं, कहां कहां से पूछे हैं। और उसने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अव्यवहारिक सा बना दिया था। उसे सही मायने में हम मेंटल स्ट्रेंथ का जज करने वाला पेपर नहीं कह सकते, और उसका परिणाम हमारे सामने है। इसीलिए जब पिछले साल ये पेपर्स आए थे तो इसका बहुत जबरदस्त रूप से विरोध हुआ था, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, धरना भी दिया गया, और मैंने भी इसके विरोध में एक बहुत बड़ा लेख दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में लिखा था। दोस्तों, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आपको कहानी किस्से के रूप में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केस स्टडी के रूप में ये बात बता रहा हूं। तो केस स्टडी क्या है? देखिए, आपका इस साल का टारगेट क्या होना चाहिए, सीधे सीधे बता देने का कोई अर्थ नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए कि मैं किस आधार पर कहूं कि आपका टारगेट ये हो। क्या अभी चूंकि मोटे तौर पर कह लीजिए कि 76 मार्क्स का कट ऑफ रहा है, तो मैं कह दूं कि आपको 80 के लिए कोशिश करना चाहिए, या आपको कह दूं कि नहीं 90 मार्क्स के लिए तो कोशिश करना ही चाहिए, लेकिन उसका आधार क्या होगा? तो मैं केवल यहां आधार की बात कर रहा हूं, और यहां जो मेरे सामने केस स्टडी के रूप में जो केस मौजूद है वह है सन 2013 की मुख्य परीक्षा, सन 2013 की मुख्य परीक्षा। अभी जिस पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, ये 2013 में आया पहला था। तो 2013 के जो टॉपर रहे हैं वो गौरव अग्रवाल है, जो पहले से ही आईपीएस में थे और उन्होंने टॉप किया, इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट था। अब आप देखिए कि मेंस में वो कितना मार्क्स हासिल करते हैं, मेंस में, प्री में उनके बहुत मार्क्स है, मेंस में वो हासिल करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में, आप सोच करके देखिए, 338 नंबर 1000 के अगेंस्ट, यानी 33.8%। कॉलेज में भी जो पासिंग मार्क्स ज्यादातर कॉलेजेस में 35% तो हैं। तो आईएएस का टॉपर जनरल स्टडीज में स्कोर करता है 33.8%। अगर आप 2013 के जनरल स्टडीज मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे तो दिमाग थोड़ा सा चक्कर काटने लगेगा कि ये क्या है। और ये 33.8% तब है जबकि बकायदे जो आपका फोर्थ पेपर होता है, जिसे आप एथिक्स का पेपर कहते हैं, उसमें अच्छा खासा स्कोर होता है, और इनके भी जो स्कोर रहे हैं 102 मार्क्स के रहे हैं, इसके बावजूद 33.8%। एक पेपर में तो उनके मार्क्स ही लगभग 60-65 के आसपास है, सोच करके देखिए। और उस साल जो कट ऑफ मार्क्स था, दोस्तों आप सोच करके दंग रह जाएंगे, वो था 564 कट ऑफ मार्क्स था मेंस का, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। इस साल कितना है? 741। तो हम ये तो नहीं कह सकते किस तरह गिरा है, इस बार तो कट ऑफ मार्क्स 741 है। कितने मार्क्स का फर्क है? 177 नंबर का फर्क है, सोच करके देखिए। ये मैं आपको केस स्टडी के रूप में आंकड़ों में उलझा नहीं रहा हूं, मैं तार्किकता के आधार पर टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। हुआ क्या, उस समय भी आलोचना हुई थी, ये किस तरह का पेपर सेट किया गया है, कितना कम स्कोर आ रहा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विस के लिए भर्ती होने जा रही है और उसका जो फर्स्ट रैंकर है वो इतने कम मार्क्स हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर ही पेपर सरल कर दिया गया, अच्छा कर दिया गया, मॉडरेट कर दिया गया, और मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर कितना पहुंच गया, लेकिन अभी जो आप मार्क्स देख रहे हैं मेंस के और फाइनल सिलेक्शन के, लगभग 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 उसी तरह के मार्क्स आने शुरू हो गए जो अभी तक जारी हैं। दोस्तों, इसके आधार पर जो मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर के ये कि चूंकि पिछली बार का पेपर बहुत कठिन रहा है, उसका विरोध भी हुआ है, इसीलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि यूपीएससी उस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद इस बार के अपने पेपर को कम से कम व्यावहारिक स्तर पर तो लाएगा ही। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यावहारिक स्तर पर पेपर लेकर के आएगा वो कितना व्यावहारिक होगा। ये बात मैं स्पेशली देखिए इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का जो कट ऑफ मार्क 75.41% है, अब उसको हम अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। इसकी गिरावट देखिए, फिर से हम थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं, अतीत पर चलते हैं। सन 2016 में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर रहा जो कट ऑफ मार्क्स है 116 मार्क्स, 116 नंबर 2016 में, यानी कि 58%। और इसके बाद से कमोवेश लगभग लगभग कट ऑफ मार्क्स गिरने शुरू हो गए और गिरते 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 अब वो 38% पर आ गए हैं, 20% की गिरावट। और इस बीच में यूपीएससी अपने प्रश्न पत्र के स्वरूप पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से आश्चर्य हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं तो विचार करना चाहिए कि भाई आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं तो टैलेंट ढूंढने का एक आधार भी तो होता है। अच्छे अच्छे टैलेंट को अगर आप प्री में ही बाहर कर देंगे, मेंस में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे सिविल सर्विस में अच्छे टैलेंट को लेंगे। तो आप इस तरीके का तो रखिए पेपर कम से कम कि जो एक सामान्य स्तर का भी जो स्टूडेंट है उसे मौका मिले कि वो मेंस तक जाए, क्योंकि जो परीक्षा है वो तो मेंस ही है, प्री तो केवल एंट्री एग्जाम की तरह है, और आप एंट्री को ही इतना कठिन बना दे रहे हैं, उसी को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाए। 20% की गिरावट विद इन 7 ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस बार यूपीएससी का जो पेपर आएगा वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा इजी आना चाहिए। कितना इजी आना चाहिए, उस इजी आने के आधार पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। इसके बारे में मैं आपको केवल एक तर्क बता रहा हूं, एक तथ्य बता रहा हूं। अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारे मैच देखे ही होंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी पता लगा कि फर्स्ट जो टीम है 300 रन बनाती है, इसके बाद दूसरी टीम खेलती है तो 300 रन बनाने वाली टीम हार जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पहली टीम है जिसने शुरुआत में 150 रन बनाए, पता लगा कि वो जीत गई। तो 300 रन बनाने वाली टीम हार जाती है और 150 रन बनाने वाली टीम जीत जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? सच पूछे तो इसे ही हम कहते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता प्रतियोगिता के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो मेरा निष्कर्ष होता है वो ये है कि आपको स्कोर का टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देते हुए अपना बेस्ट स्कोर करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बेस्ट स्कोर है ये होता क्या है, ये कैसे होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, अब आप इसके बारे में कैसे अनुमान लगाएंगे, आप अपना प्लान कैसे करेंगे। दोस्तों, इस बार जिन्होंने सेकेंड रैंक हासिल की है अनिमेश प्रधान, मैं सच पूछे तो उनसे बहुत प्रभावित हूं। उनका एक वीडियो मैंने सुना है, ऑडियो वीडियो मैंने सुना है, देखा भी है। ये बकायदे दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर अवेलेबल है, 49 मिनट्स के आसपास का है। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप उसे सुने, आपके प्रिपरेशन के लिए वो बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्री के ही संदर्भ में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये बात कही कि उनके पास ज्यादा समय नहीं होता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने इतनी बेहतरीन सफलता हासिल की है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सैल्यूट हिम। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे जो सेक्टर कमजोर होते थे, जैसे आर्ट कल्चर कमजोर है या और जो दूसरे सेक्टर कमजोर है, तो अब कोचिंग वो ले नहीं सकते थे क्योंकि वो बकायदे इंडियन ऑयल में काम करते थे और वो उनकी जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब वगैरह पे जाता था और वहां मैं लेक्चर ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन मैं जो अंडरलाइन करना चाहूंगा, मैं ऐसे लेक्चर प्रीफर करता था जो एनिमेटेड हो। एनिमेटेड लेक्चर्स में सुनता था, मैं देखता था और वहां से तैयारी करता था। अब आप देखिए कि उन्होंने दो बातें कही कि आप जिस सेक्टर में अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर है, मेरा ये कमजोर है, मेरा मॉडर्न इंडिया कमजोर है, मेरा एनवायरमेंट कमजोर है, इसका मतलब है कि आप उसे छोड़िए मत, आप उस पर तैयारी कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, इसीलिए मैंने इस विषय को अभी चुना है। आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने पौने 2 महीने का तो आपके पास वक्त है, तो आप जो कमजोर सेक्टर हैं अपने, उन पर काम कीजिए। यहां मैं एक बात आपको स्पेशली बताना चाहूंगा और वो ये कि हम लोगों ने अपना जो ऑनलाइन कोर्स जो लॉन्च किया हुआ है, फुल कोर्स तो है ही, लेकिन हमने उस फुल कोर्स को अब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है केवल आप लोगों की सुविधा के लिए। मान लीजिए कि आप एनवायरमेंट के सेक्टर को अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आप एनवायरमेंट का छोटा सा कोर्स है वो ले लीजिए। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को करना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को करना, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो छोटा सा कोर्स ले सकते हैं और उसकी जो फीस होगी या कह लीजिए उसकी जो कीमत होगी वो बहुत कम होगी, बिल्कुल अफोर्डेबल होंगे। और हमने ये केवल आप लोगों के हित के लिए किया है दोस्तों, आप उस पर विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो अनिमेश ने कही थी वो थी एनिमेटेड लेक्चर्स। मैं ढूंढता था एनिमेटेड लेक्चर्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी ऑनलाइन के लेक्चर्स हैं दोस्तों वो एनिमेटेड हैं। 5 साल तक लगातार उस पर काम करने के बाद हम लोगों ने अपना ये कोर्स लॉन्च किया है, उसका एक एक सेकंड एनिमेटेड है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, कोई भी छोटा सा कोर्स लेकर के आप ट्राई करके देख सकते हैं दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट होगा आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और आपका ये जो टारगेट होगा इतना तो हो ही जाएगा कि आप प्री को क्वालिफाई कर सकें। आपको शायद निराशा हो रही होगी कि मैंने परसेंटेज तो बताया ही नहीं। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता कि मैं आपको परसेंटेज बताऊं कि आप 90 मार्क्स के लिए कोशिश कीजिए, आप 92-95 मार्क्स के लिए कोशिश कीजिए। बस एक ही टारगेट होना चाहिए, अधिकतम मार्क्स। 300 रन बनाने वाली टीम हार जाती है और 150 रन बनाने वाली टीम जीत जाती है। आप देखिए इस बार 76 नंबर लाने वाले सिलेक्ट हो गए और पिछले साल 80 लाने वाले भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये कंपटीशन है और कंपटीशन के चरित्र को समझ करके हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम अपना अधिकतम दें और हम अपने किसी भी पक्ष को कमजोर न छोड़ें दोस्तों। यही टारगेट के लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और सुझाव है। तो फ्रेंड्स इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, सौम्या गुप्ता बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, हसमुद्दीन अत्तारी जमशेदपुर से, सूरज सिंह श्रद्धा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, संतोष देवांगन जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से और मोहित शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।